हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सेलिना ने आशिका को पकड़ लिया था। वो लगभग उसे तृप्ति के पास लेकर जाने ही वाली थी, लेकिन बीच में अभिमान आ गया था। अभिमान को सेलिना और आशिका के रिश्ते और बाकी टेंशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो एक बात अच्छे से जानता था कि अगर आज सेलिना आशिका को वहां से लेकर गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभिमान ने जैसे तैसे आशिका को सेलिना के साथ जाने से रोक लिया था। इसके लिए उसे सेलिना के साथ थोड़ा फ्लर्टी वे में बात करना पड़ा और साथ ही उसे ये कहना पड़ा कि वो बाद में आकर आशिका को लेकर जा सकती है। सेलिना अभिमान की बातों में आ गई थी और कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो आशिका को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। जैसे ही आशिका अभिमान के साथ जाने के लिए मुड़ी, पीछे से सेलिना ने उसे उसका पूरा नाम लेकर बुलाया। उसने उसे आशिका सिंघानिया कहकर पुकारा, जिसे सुनकर अभिमान और आशिका दोनों वहीं पर रुक गए थे। अभिमान के सामने आशिका का पूरा नाम आ गया था, जो वो कभी नहीं चाहती थी। तो वही उसका नाम सुनकर अभिमान को झटका सा लगा। आशिका सिंघानिया उसकी पत्नी यानी आशी का पूरा नाम था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐश का नाम भी आशिका होगा। सिर्फ नाम ही एक नहीं था, बल्कि सरनेम भी बिल्कुल एक जैसा था। इस वक्त अभिमान क्या सोच रहा था आशिका समझ सकती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यहां से निकलकर बात करते हैं, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी। उम्मीद है अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी आशिका सिंघानिया, अभिमान ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा। उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था। अभिमान ने कभी नहीं सोचा था कि आशिका उस पर इतना भी यकीन नहीं करती कि वो उसे अपना पूरा नाम बताए, जबकि वो उसकी सेफ्टी के लिए इतना सब कुछ कर रहा था। आशिका ने गहरी सांस ली और हां में सिर हिला दिया था। जाने से पहले आशिका ने गुस्से भरी निगाहों से सेलिना की तरफ देखा। मुझे इस तरह देखने से कुछ नहीं होने वाला, अपनी शादी की तैयारी शुरू कर लो, सेलिना आईब्रो चढ़ाकर बोली। आशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभिमान के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। सेलिना बेफिक्र थी, क्योंकि उसके पास अभिमान का प्राइवेट नंबर था और उसके विजिटिंग कार्ड से सेलिना ने तुरंत उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। अभिमान राजवंश, सो तुम सिंगल हो, परफेक्ट मैच फॉर मी, रिच हैंडसम बिलियनर, मॉम की यूजलेस फोनी बेटी मेरे कुछ तो काम आई। सेलिना के चेहरे पर प्लेफुल स्माइल थी। वो खुश थी कि आशिका के जरिए उसे एक अमीर लड़का मिल गया था जिसके साथ वो सेटल हो सकती थी। सेलिना का मन तो नहीं था कि वो आशिका को जाने दे। उसे डर था कि वो गायब ना हो जाए, पर अभिमान के चलते वो कुछ बोल भी नहीं पाई। आशिका के चक्कर में उसे अभिमान से दोबारा मिलने का मौका जो मिल रहा था। वहीं अभिमान और आशिका इस वक्त गाड़ी के अंदर थे। काफी देर तक इन दोनों के बीच बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। अभिमान ने ड्राइव करते हुए एक नज़र आशिका की तरफ देखा, जो परेशान लग रही थी। वो गाड़ी के बाहर देख रही थी। अभिमान ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम्हारा नाम आशिका सिंघानिया है? आशिका ने तुरंत अभिमान की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं मिस्टर राजवंश, जैसे मैंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। आप अच्छे से जानते हैं कोई भी हैकर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है, वैसे ही मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन हमारा रिश्ता अब सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा। ठीक है, तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानती, लेकिन मैं तो मानता हूँ, कम से कम अपना नाम तो बता सकती थी, अभिमान चिढ़कर बोला। उसे आशिका के नाम न बताने पर तो गुस्सा आ ही रहा था, साथ ही इस बात से भी चिढ़ हो रही थी कि उसका नाम आशिका सिंघानिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, वैसे भी मुझे अपना नाम पसंद नहीं है और मुझे सब ऐश नाम से ही बुलाते हैं। मेरी सो कॉल्ड फैमिली को मेरे इस नाम के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम साथ में नहीं रहते हैं। मैंने अपनी अर्ली टीनेज में ही घर छोड़ दिया था, या यूं कहूं कि मुझे निकाल दिया गया था। इतना जानना काफी है या पूरा बायोडेटा दो? आशिका ने भी इरिटेट होकर जवाब दिया। पहले ही सेलिना के उसे ढूंढने पर वो परेशान थी, ऊपर से अभिमान उसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा था। अभिमान को तो अंदाजा तक नहीं था कि उसकी आज की इज्जत के चलते आशिका कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। ना वो अपने अननोन हस्बैंड को ढूंढ पाई थी और ना ही उससे बचकर भाग पाई थी। आशिका ने अपनी आंखें बंद की और मन में कहा, तो इस तरह मेरी लाइफ को बर्बाद होना था। अब तो वो आदमी मेरे डिवोर्स का भी इंतजार नहीं करेगा। मेरे इतने सालों की मेहनत, ऐश, मेरी आइडेंटिटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आशिका खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आशिका का दम घुटने लगा था तो उसने गाड़ी का शीशा खोल दिया था। अभिमान ने देखा आशिका एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। उसने पानी की बोतल आशिका की तरफ बढ़ाकर कहा, वैसे एक बात तो कॉमन है कि हम दोनों को ही इस नाम से नफरत है। आशिका ने अभिमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खोई हुई लग रही थी, साफ जाहिर था वो परेशान है। अभिमान ने आशिका को कंफर्ट फील करवाने के लिए कहा, आशिका। उसके आशिका कहते हुए आशिका ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अभिमान ने तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए धीमी शांत आवाज में कहा, आई मीन ऐश, मैंने उसे टालने के लिए वो सब कहा था। तुम ये मत सोच लेना सच में तुम्हें काम से निकालकर उसके पास छोड़ाऊंगा। अब तक सेलिना ने तुम्हारी सारी डिटेल निकाल ली होगी और उसके पास तुम्हारे नंबर और ऑफिस का एड्रेस भी है। व्हाट यू थिंक वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, आशिका बोली। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। ये सब उसके डर की वजह से हो रहा था। अभिमान ने गाड़ी रोकी। वो मॉल से काफी आगे आ गए थे। आशिका काफी रेस्टलेस हो रही थी। अभिमान ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और आशिका की आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, वो कहीं भी आ जाए लेकिन मेरे होते वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। मैं उसे तुम तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा, मेरा यकीन करो। उस जैसी लड़कियों को कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आशिका अभिमान की गहरी भूरी आंखों में देख रही थी। उसने अभिमान की बात पर पलके झपकाई और कहा, सेलिना हमेशा से अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। तुम उसके लिए परफेक्ट चॉइस हो। अभिमान, तुम मैरिड हो, इससे तुम्हारी शादी पर असर हो सकता है। पहली बार आशिका ने अभिमान का नाम लिया था और वो उससे काफी इनफॉर्मली भी बात कर रही थी। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अभिमान के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसे ऐसे मोमेंट पर मुस्कुराते देखकर आशिका ने घूर कर उसकी तरफ देखा। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ जो तुम स्माइल दे रहे हो। तुम्हारी एक फालतू सी जिद के चक्कर में हम दोनों मुसीबत में आ गए हैं, आशिका चिढ़कर बोली। हाँ जानता हूँ सिचुएशन सीरियस है, पर पहली बार तुमने मेरा नाम लिया है और मुझसे अच्छे से बात भी कर रही हो, वरना तो यही फील आती है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। चलो घर चलते हैं, मेरे घर तक कोई नहीं पहुंच सकता। तुम्हारी सौतेली बहन, माँ या पूरा खानदान भी क्यों ना आ जाए, अभिमान ने जवाब दिया और गाड़ी फिर से स्टार्ट कर ली थी। कुछ ही देर में वो अभिमान के कंपनी पहुंच चुके थे। अंदर जाने से पहले अभिमान ने इधर उधर देखा कि कहीं सेलिना उनके पीछे तो नहीं आ गई है। आशिका को ऊपर अपने फ्लोर पर छोड़ने के बाद अभिमान वहां से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ सेलिना तृप्ति के पास घर पहुंची, उसे ये बताने के लिए कि उसने आज आशिका को देखा था और उसने उसे पकड़ लिया है। जैसे ही सेलिना वहां गई तो उसने देखा वहां एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके साथ तृप्ति बहस कर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आशी थी।
वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु को जब नक्श की करतूत के बारे में पता चला तो वो गुस्से में सीधा राजवंश विला पहुंचा। ना सिर्फ नक्श ने वसुधा को इशिका से बात करने से रोका बल्कि उसने इशिका के दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाल दी थी। राजवंश विला में नक्श और वसुधा एक दूसरे से बहस कर रहे थे। नक्श अभी भी खुद को सही ठहरा रहा था। वो अपनी सफाई में बोला, दादी अब आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। कौन सी इशिका की याददाश्त पूरी जिंदगी के ले गई है? जब उसे सब याद आएगा तो ये भी याद आ जाएगा कि वो अभिमन्यु चाचू की वाइफ है। आप हमेशा की तरह सेल्फिश हो रही हैं। आपको अभिमन्यु चाचू के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। वहां इशिका अपना सब कुछ भूलकर बैठी है और आपको अब तक इसी बात की पड़ी है कि मैंने इशिका के सामने चाचू की वाइफ किसी और लड़की को बता दिया। नक्श बोले जा रहा था तभी अभिमन्यु जल्दी से अंदर घुसा और नक्श की कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक पंच मारा। नक्श की नाक से खून बहने लगा था। अभिमन्यु गुस्से में तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि उससे दूर रहना। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हारे इरादे सही हैं और दूसरी तरफ तुम मेरे और इशिका के बीच में दूरियां लाने की कोशिश कर रहे हो। चाचू आप बिना सच जाने मुझे इस तरह मार नहीं सकते हैं। आपको पता भी है दादी ने क्या किया। वो इशिका के पास चली गई और उसे जाकर बहू बताने लगी। पहले की बात अलग थी, जब वो इशिका के घर जाकर उसे बहू कहने लगती थी। इशिका के दिमाग में चोट लगी है और वो काफी वीक है। आपको आइडिया भी है कि उनकी इस हरकत पर इशिका पर कितना गलत असर हो सकता है, नक्श ने बिफरते हुए जवाब दिया। ठीक है, दादी ने अपने इमोशंस में आकर गलती कर दी, लेकिन तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि मेरी वाइफ लंदन में रहती है। अब अगर मैं इशिका के करीब जाऊंगा, उससे बात करने की कोशिश करूंगा, उसे कुछ समझाने की कोशिश करूं, तो उसे यही लगेगा कि मैं अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्ट ले रहा हूं। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, अभिमन्यु बोला। उसका कहना भी गलत नहीं था। नक्श की इस हरकत ने इशिका और अभिमन्यु को फिर से एक होने से पहले ही अलग कर दिया था। नक्श ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे उसका जो सूझा मैंने किया, मुझे नहीं पता था कि मेरी कौन सी लाइन का क्या असर हो सकता है, मुझे बस इशिका की फिक्र थी। जिस तरह से नक्श बहाने बना रहा था, उसे सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने सिर हिलाकर कहा, मैंने अब तक तुम्हारी हर हरकत को इग्नोर किया था। लास्ट टाइम तुमने इशिका को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तभी तुम्हें घर से निकाला था, और आज फिर तुम इशिका को हर्ट कर रहे हो। हमारे रिश्ते के बीच दूरियां लाकर फायदा उठाना चाहते हो। बहुत हो गया नक्श राजवंश, जहां से आए हो वहीं अगले 24 घंटे वापस चले जाओ। नहीं तो याद रखना, किसी के छोटे से बिजनेस को बर्बाद होने में 1 मिनट नहीं लगता है। वैसे भी सुना है कि तुमने जो शुरू किया है वो कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं है। अभिमन्यु की बात सुनकर नक्श के चेहरे का रंग उड़ गया था। 1.5 साल पहले नक्श और उर्वशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हुए न्यूयॉर्क में गए थे और उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था। नक्श खुद को कितना भी काबिल क्यों ना कह दे, लेकिन वो उस बिजनेस को ठीक से संभाल नहीं पाया था। ये अभिमन्यु था जिसने राजवंश एम्पायर को सफलता के नए मुकाम पर पहुंचाया था। नक्श तो अपना एक छोटा सा बिजनेस तक ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। ऊपर से उसकी हरकतों की वजह से अभिमन्यु उसे भी बर्बाद करने का कह रहा था। नक्श पहले अभिमन्यु से बहस कर रहा था, लेकिन अब उसने खुद को शांत किया और नरम लहजे में कहा, चाचू आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे इरादे बुरे नहीं हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी जाकर इशिका को सब सच बता देता हूँ कि आप ही उसके हस्बैंड हैं। तुम अब इशिका के आसपास भी नहीं नजर आओगे, सबसे पहले यहाँ से निकलो, अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाया। फिर उसने अपने पीछे खड़े पृथ्वी की तरफ देखकर कहा, मेक श्योर करो कि ये यहाँ से न्यूयॉर्क की फ्लाइट ले, तब तक इसके ऊपर से नजर मत हटाना और इसका मोबाइल छीन लो। अभिमन्यु ने गार्डों की तरफ इशारा किया जिन्होंने नक्श को पकड़ लिया था। नक्श खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्डों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। चाचू आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके आप कभी इशिका को वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। आज नहीं तो कल वो मेरे बारे में पूछेगी, मेरे बारे में बहाना बना भी देंगे तो क्या होगा। मिस्टर सिंघानिया, आयशा और मालविका को आप कहां से लेकर आएंगे? सिर्फ मैं ही हूं जो उसे इन हालातों में संभाल सकता हूं। डॉक्टर ने यही कहा था कि अगर इशिका ने इस हालत में स्ट्रेस लिया तो उसके दिमाग और बच्चे पर असर होगा। नक्श अभिमन्यु को मनाने की कोशिश कर रहा था। उसके मुंह से बच्चे का जिक्र सुनकर अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा था। अब तक नक्श इशिका की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं जानता था, उसे अस्पताल के आसपास भी नहीं आने दिया, फिर न जाने क्यों उसे सब पता था जो डॉक्टर ने इशिका का ध्यान रखने के लिए करने को कहा था। अभिमन्यु ने बात को इशारा किया तो उन्होंने नक्श को छोड़ दिया था। नक्श को लगा कि अभिमन्यु उसकी बातों में आ गया है, लेकिन तभी अभिमन्यु ने उसका गला पकड़ा और सर्द आवाज में कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? अचानक अभिमन्यु के दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ। उसने नक्श को वहीं दूर धकेला और वहां से दौड़कर जाने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त गहरे डर के भाव थे।